الذين اصطفاه ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى المعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما میری آواز بھی دوسری کی تھرو ڈال رہی ہے آپ سب کو نظر آ رہا ہے آپ بیٹھ کر کے کرتے ہیں آپ سب کو نظر آ رہی ہے نا اسکرین ٹھیک ہے اچھا تو آج ہم کلاس شروع کر رہے ہیں جس میں کہ ہم نے ایک نئی چیز شروع کرنی ہے ٹھیک ہے پچھلی جو ہماری کلاسز ہوتی تھیں پچھلے تین سال سے جو ہم کر رہے تھے کیا کر رہے تھے تین سال سے تفسیر پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے نا وی ور ریڈنگ اباؤٹ قرآن's ایکسپلینیشن ٹھیک ہے جس کو تفسیر کہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ہم نے سورہ کہف پڑھی تھی اس کی تفسیر اور اس کے بعد پھر ہم نے سورہ قصص شروع کری تھی اور اس کی تفسیر پڑھ کے ہم نے پچھلی کلاس کے اندر پچھلے سیٹرڈے کو مکمل کری صحیح ہے تو پچھلی کلاس میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے سورہ قصص کی ایک آیت کے بارے میں بات کری تھی جو کہ بالکل آخر میں آتی ہے ابھی میں نے تلاوت بھی کری تھی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی المعاد کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا تھا کہ جس نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے جس نے آپ کے اوپر قرآن فرض کیا ہے وہی آپ کو مکہ مکرمہ کی طرف لوٹائیں گے یعنی آپ کو فتح آپ کو سکسیس آپ کو وکٹری عطا فرمائیں گے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر مفسرین نے کیا لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے وکٹری دینی ہے اللہ تعالیٰ نے حکومت دینی ہے ٹھیک ہے تو نبی علیہ السلام نے کیا کرنا ہے بھائی ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے کیا کرنا تھا انہوں نے فرائض کے اوپر عمل کرنا تھا ٹھیک ہے نا فرائض کیا چیز ہوتے ہیں فرائض وہ حکم ہیں وہ ساری باتیں جو کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کرنے کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا انہی کو فرائض کہتے ہیں صحیح ہے تو یہی جو ماڈل ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرائض کو پورا کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو وکٹری دینی تھی فتح دینی تھی یہی ماڈل اگزیکٹلی ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے کہ ہم نے بھی فرائض کے اوپر عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایز اے ریوارڈ دنیا کے اندر وکٹری دینی ہے عزت دینی ہے رائٹ ریسپیکٹ دینی ہے ٹھیک ہے تو اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ یہ فرائض کیا ہیں and how do we follow them ٹھیک ہے کہ فرائض اللہ تعالیٰ نے کیا 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 کہے ہیں ہمیں فرائض نا ٹھیک ہے ایک تو یہ کوشچن ہو گیا تو اس کوشچن کا آنسر ہمیں کہاں سے ملے گا کہ کیا فرائض ہیں اور ہمیں ان فرائض کے اوپر کیسے عمل کرنا ہے ہاؤ واٹ از دا میتھڈ طریقہ کیا ہے فرائض کے اوپر عمل کرنے کا جو نبی علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا وہی طریقہ ہوتا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نماز کو فرض کیا ہے نا ٹھیک ہے کہ بھئی نماز پڑھو اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ بھئی ہاؤ کیسے نماز پڑھیں کب نماز پڑھیں کتنی نماز پڑھیں ہے نا یہ کوشچن ہے نا اللہ تعالیٰ نے حکم تو دے دیا نماز پڑھو لیکن اب کیسے پڑھیں گے اس کا جواب ہمیں کہاں سے ملے گا نبی علیہ السلام کی زندگی سے ملے گا نا ٹھیک ہے تو اگر ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم فرائض کا کیسے پتہ چلیں گے چلائیں گے کہ بھی ہمیں کیسے ان فرائض کے اوپر عمل کرنا ہے پہلی بات ٹھیک ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ فرائض پر عمل کرنے کے لیے نا صرف نالج کافی نہیں ہے یہ تو ساری کلاس ہی ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے اس کے اندر ایسے کہتے ہیں رہنے دیں تو نیکسٹ ٹائم اس کو پہلے سے کر دیں گے اچھا تو بات کیا ہو رہی ہے کہ فرائض پر عمل کرنے کے لیے ایک چیز تو ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نالج ہونا ٹھیک ہے دوسری کون سی چیز ہوتی ہے جس کی ضرورت ہے فرائض پر عمل کرنے کے لیے جب آپ کو نالج مل گئی کہ فرائض پر کیسے عمل کرنا ہے کتنا عمل کرنا ہے کب عمل کرنا ہے کب صبح کے وقت پھر دوپہر کے وقت پھر شام کے وقت फिर मगरिब के वक्त, फिर उसके बाद रात के वक्त, ये पांच फराइज हो गए ना। कब कब का आंसर क्या है? ये पांच टाइम्स हैं नमाज पढ़ने के, ठीक है। रोजा रखना एक फर्ज है, कब रोजा रखना है? जब रमजान मुबारक का महीना आएगा तब रोजा रखना है। तो ये तो कब का आंसर हो गया। जकात कब देनी है? कब देनी है जकात? नहीं, साल में एक दफा जकात देनी है। जो भी आपका टाइम बनता है साल में एक दफा का, वो चाहे वो मुहर्रम में बने, चाहे रमजान में बने, चाहे शाबान में बने, तो जकात कब देनी है? उसी तरीके से जकात कैसे देनी है, रोजा कैसे रखना है, नमाज कैसे पढ़नी है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स क्या कहलाते हैं? इनको कहते हैं नॉलेज, ठीक है ना। आपको इल्म चाहिए, इल्म इंग्लिश में नॉलेज, सही है। तो इल्म चाहिए। अच्छा, जब आपको इल्म हासिल हो गया तो अब आप जो है वो फराइज पे अमल कर लेंगे। ये जो नॉलेज है कि पांच दफा नमाज पढ़नी होती है, क्या ख्याल है? बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स दुनिया में रहते हैं जिनको पता है कि पांच दफा नमाज पढ़नी है, तो क्या वो नमाज पढ़ लेते हैं पांच दफा? तो और क्या चीज चाहिए होती है फर्ज पे अमल करने के लिए? मुसलमान होना, ये आप कह सकते हैं ईमान। और आप क्या कह रहे थे? कोई और यहाँ पे जो जो पूछ रहे हैं, साल में छह दिन जकात का जवाब दे दिया इनका। गर्ल्स की तरफ कोई जवाब है तो आप लोग भी लिखें, मुझे आपकी विंडो नजर आ रही है मेरे फोन पर। अच्छा, तो ईमान जरूरी होता है। अच्छा, चले, ईमान जो है वो बहुत सारे मुसलमानों के पास ईमान होता है, बहुत सारे मुसलमान है। क्या सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? सारे तो नहीं पढ़ते। तो फिर किस चीज की जरूरत होती है? नॉलेज के बाद कौन सी ऐसी चीज होती है कि जिसके बगैर आप फराइज पर अमल कर नहीं पा रहे होते, कर नहीं पाते? तौफीक। अच्छा, बहुत अच्छा जवाब है। वैसे ही तक्वा, गाइडेंस। गाइडेंस तो इल्म में आ गया ना, इल्म मींस गाइडेंस, सही है। ईमान वैसे सही जवाब है, लेकिन उसको हमने थोड़ा और बताना है। नियत होना और हाउ टू इम्प्लीमेंट, नहीं, हाउ टू इम्प्लीमेंट डिस्कवर्ड इन अंडर नॉलेज। इल्म में कवर हो चुका, तरीके का पता होना ये इल्म हो गया, ठीक है। दुआएं उन्होंने लिखा, शेख की दुआएं, चलिए बहुत अच्छी बात है। यकीन, शैतान से बचाओ, फियर ऑफ अल्लाह, फेयर ऑफ अल्लाह। अच्छा, देखें, कोई भी काम करना हो ना, सही है, तो उसको करने के लिए ना इंसान को एक चीज चाहिए होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन नाम अक्सर लोग वाकिफ है इस टर्म से, मोटिवेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन भी कहते हैं, यू शुड बी इंस्पायर्ड टू डू इट, सेल्फ इंस्पिरेशन कहते हैं उसको। इसी चीज को अगर हम उर्दू में या अरबी में ट्रांसलेट करें तो उसको क्या कहेंगे? मोटिवेशन, इंस्पिरेशन को आप उर्दू में कोई बता सकते हैं? इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है,
हौसला
बड़ों की निस्बत। हौसला, हौसला अफजाई। हाँ, हौसला अफजाई इसकी एक ट्रांसलेशन है, लेकिन हौसला, हौसला अफजाई तो कोई दूसरा करेगा, ठीक है। लेकिन ये हौसला आपके अंदर वाकई पैदा भी हो, इसके लिए एक चीज चाहिए होती है। हाँ, जज्बा, जैसे उन्होंने कहा। अब समझ में नहीं आ रहा, जोर से बोले। अच्छा, चले छोड़ें। हाँ, शौक, ये भी एक अच्छा लफ्ज है, जज्बा एक अच्छा लफ्ज है, ठीक है। इसको ना हम इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में आपको बताते हैं कि इस चीज को कहा क्या कहा जाता है, कुरान की टर्मिनोलॉजी कहता है, ठीक है। कुरान में इस चीज को क्या कहा जाता है, जज्बे को, शौक को? इसको कहते हैं मुहब्बत, मुहब्बत, लव, ठीक है। कुरान में इसको मुहब्बत कहते हैं, जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करते हैं, टूट कर मोहब्बत करते हैं। हुब, हुब जो है ना, ये मोहब्बत ही का एक और लफ्ज है, ठीक है, मोहब्बत ही के लिए। तो मोहब्बत चाहिए होती है किसी चीज पर अमल करने की, नहीं ना, जिसको हमने मोटिवेशन इंस्पिरेशन अंग्रेजी में कहते हैं ना, उसी को उर्दू और अरबी के अंदर ना उसको मोहब्बत कहते हैं। ठीक है, जिस शख्स के पास ईमान होता है, जो ईमान वाला होता है ना, तो उसके बाद उसके पास अल्लाह ताला की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी मोहब्बत आ जाती है, छोटी सी मोहब्बत आ जाती है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि एज इफ कि उसके अंदर मोहब्बत का सीड पड़ जाता है, सीड बीज। ठीक है, जो भी कलमा पढ़ लेता है, मुसलमान हो जाता है, तो उसको मोहब्बत का बीज मिल जाता है, सीड मिल जाता है। अब ये सीड जो है वो जैसे जैसे ग्रो करता रहता है, वैसे वैसे फिर ये मोहब्बत बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये मोहब्बत वो चीज होती है कि जो अमल करने के लिए चाहिए होती है। जिसके अंदर बहुत थोड़ी सी मोहब्बत होगी वो थोड़ा सा अमल करेगा, जिसके अंदर ज्यादा मोहब्बत होगी वो ज्यादा अमल करेगा, जिसके अंदर और ज्यादा मोहब्बत होगी और ज्यादा मोहब्बत वो और ज्यादा अमल करेगा। ठीक है, तो ये बात हम आपको क्यों कह रहे हैं, हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि बात हमने शुरू करी थी कि हमारा काम है फराइज में अमल करना, लेकिन फराइज पर अमल करना जो है ना वो इतना आसान काम नहीं होता। ठीक है, उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक चाहिए होता है इल्म नॉलेज, ठीक है, और दूसरी चीज चाहिए होती है मोहब्बत। ये दोनों चीजें होंगी तब आप फराइज में अमल कर सकते हैं, वरना आप फराइज में अमल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब जो है ना हमने जो क्लास के अंदर टॉपिक शुरू करना है वो टॉपिक कौन सा है, नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम की सीरत। ठीक है, उनकी जिंदगी के बारे में हमने पढ़ना है। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि भाई हमने ये बातें तो अब जान ली हैं कि हमने अल्लाह ताला के हुक्म पे अमल करना है। अगर हमें दुनिया की इज्जत चाहिए, हमें आखिरत की इज्जत चाहिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके हो सकता है, उसी तरीके पे हो सकता है जब हम फराइज के ऊपर अमल करें। लेकिन चूंकि फराइज पर अमल करने के लिए हमें नॉलेज की जरूरत होती है कि तो फराइज है क्या, कैसे करना है इनके ऊपर अमल। ठीक है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम फिका की क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, जो लड़कों के लिए आधे घंटे की क्लास होती है इस क्लास के बाद, और लड़कियों के लिए जो है वो एक अलग मिल्क फॉर गर्ल्स की क्लास होती है, तो उसके अंदर फिका कवर हो रही होती है, जिसमें आपको बताते हैं कि हाउ टू डू थिंग्स, व्हेन टू डू थिंग्स। ठीक है, लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं है, जस्ट टू नो हाउ टू डू थिंग्स, इल्म हासिल हो जाना काफी नहीं होता, बल्कि मोहब्बत की भी जरूरत होती है। तो ये मोहब्बत कैसे आएगी, मोहब्बत जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल होने से आएगी, उनके बारे में कि वो क्या चीज थे, कितनी कितनी खूबसूरत, कितनी ब्यूटीफुल चीज थे नबी अलैहिस्सलाम, कितनी अहम चीज थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम जितनी अच्छी अच्छी बातें सुनते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे ना, उससे फायदा क्या होगा, उससे हमें ये मोहब्बत मिलेगी। ठीक है ना, ये आप लव मिलेगा, और ये मोहब्बत फिर क्या करेगी, ये हमें उस नॉलेज के ऊपर जो कि हम फिका की क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं, उस नॉलेज के ऊपर अमल भी करने की रीजन बनेगी, कॉज बनेगी, सबब बनेगी। ठीक है, तो इस नियत के साथ हम सीरत के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सीरत क्या चीज होती है, किसी ने यहाँ पे सवाल लिखा है, व्हाट इज सीरत। तो सीरत का मतलब होता है बेसिकली टू, यानी बेसिकली लाइफ, लाइफ हिस्ट्री या लाइफ डिटेल्स, नबी अलैहि सलाम की जिंदगी की जो तफसीलात हैं उनको सीरत कहा जाता है। ठीक है, इस सीरत का हमें पता कैसे चलता है, ये सीरत हमें कुरान से भी मिलता है, सीरत के बारे में हमें इल्म, और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से भी मिलता है, और हमें जो सहाबा कराम की बताई हुई बातें होती हैं उनसे भी मिलता है इसका पता, और हमें कुछ हिस्ट्री की बुक से भी सीरत का पता चलता है। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेज हैं सीरत के बारे में, सीरत के ये सारे सोर्सेज हैं, कुरान, हदीस, सहाबा के अकवाल और हिस्ट्री की बुक्स, ये सारे के सारे इसके सोर्सेज हैं। अच्छा, तो हमारा सबसे पहले ना व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी हैव डन सो फार इज We have defined our purpose. हम मकसद define कर रहे हैं अभी कि हम क्यों सीरत पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये बात सबको क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन है, क्यों सीरत पढ़ रहे हैं हम? सीरत इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमने किसी ओ लेवल्स का एग्जाम देना है जाकर के, इस्लामिक हिस्ट्री का, जैसे आपको देना है, ठीक है, ताकि हम आपके, यानी हम आपको एग्जाम के अंदर हेल्प करते हैं और आपके अच्छे नंबर आ जाए, हम इसलिए सीरत नहीं पढ़ रहे। ठीक है ना, हम इसलिए सीरत नहीं पढ़ रहे just because we want to know about a person. ठीक है ना, कि बस हम एक दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक रिलीजन है, जिस रिलीजन को इस्लाम कहते हैं, और उस इस्लाम के जो प्रॉफिट हैं उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो जस्ट एज अ सब्जेक्ट वी शुड नो अबाउट हिम, है ना भाई। जैसे कि लोग बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी, बहुत सारे हिंदू हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, एथियस्ट हैं, वो भी सीरत को पढ़ते हैं, राइट, सो दैट उनकी उनकी नॉलेज बढ़ जाए, उनको पता चल जाए कि हाँ दुनिया में ऐसे लोग भी आए हैं जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ठीक है, इसको कहते हैं सब्जेक्टिवली सीरत को पढ़ना, दे आर जस्ट रीडिंग सीरत एज अ सब्जेक्ट ताकि उनकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाए। हमारा ये मकसद नहीं है, हम एज अ सब्जेक्ट सीरत को नहीं पढ़ रहे, ठीक है, ताकि हमारी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाए, ताकि हम किसी एग्जाम में क्लियर हो जाए, ताकि हमें कोई सर्टिफिकेट मिल जाए, ये सब हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि हम दीन इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले बन जाए, जिसके लिए हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत चाहिए। ठीक है, तो मोहब्बत को एक्वायर करना ये हमारा मकसद है सीरत को पढ़ने का। ठीक है, अच्छा, अब जब ये डिटरमिन हो गया कि सीरत पढ़ने का मकसद जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करना है, तो अब ना हम जो चीज भी पढ़ेंगे उस चीज के अंदर हमें ये बात याद रहेगी इंशाअल्लाह, याद रहेगी इंशाअल्लाह कि हम ये चीज जो है मोहब्बत की नीयत से पढ़ रहे हैं, सो दैट हमें मोहब्बत मिल जाए। ठीक है ना, अब ये जो हमारे दिमाग में एक एक सोच है ना, जो कि नीयत है हमारी, उसी को सोच में कहते हैं दिमाग की, अब ये सोच जो है ना ये हमारे हर हर फेल को ड्राइव करेगी। ठीक है, यानी जो भी हम पढ़ेंगे, जैसे भी हम पढ़ेंगे, जो भी हम बात करेंगे, उसको हम इसी तरफ लेके जाएंगे ताकि हमारे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़े। सही है, तो अब जब ये बात हो गई और अल्लाह ताला से हमें सबसे पहले तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे इस इरादे में हमें कामयाबी भी अता फरमाए, तो इस वजह से सबसे पहले ना जो हमने शुरू में दुआएं मांग दी हैं वो तो हम हमेशा ही मांगते हैं। अभी हम चूंकि एक नई चीज शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए हम एक और दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से कि रब्बे यस्सिर, ए हमारे रब हमारे लिए आसान कर दीजिए इसको, वला तुअस्सिर, और इसको हमारे लिए मुश्किल ना कीजिए, वतम्मिम बिल खैर, और खैर के साथ, अच्छाई के साथ हमें तौफीक अता फरमाइए कि हम इसको कंप्लीट कर लें। ये जो प्रोजेक्ट आज हमने शुरू किया है, इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट कर लें। वो भी कनस्तईन, और अहदा हम आपसे इसके लिए मदद तलब करते हैं, हम आपकी मदद के बगैर ये नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज वी मेड एन इंटेंशन, हमने आज इरादा कर लिया कि हम सीरत पढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम पढ़ भी सकेंगे। ठीक है ना, अल्लाह ताला तौफीक देंगे, हालात बनाएंगे, तभी हम ये काम कर सकते हैं, वरना हम ये काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला की मदद की भी हमने दुआ करी है, अल्लाह ताला हमारी इस दुआ को हम सब के हक में कबूल फरमाए। तो अब जो है ना सीरत के लिए, अब मेरे लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कौन सी बुक यूज की जाए। ठीक है, क्योंकि सीरत एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बुक्स लिखी है, बहुत ज्यादा बुक्स मौजूद है सीरत के ऊपर। ठीक है, सबसे ज्यादा बुक्स तो अरबिक के अंदर मौजूद है, जिसमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल जिंदगी। ठीक है, उर्दू के अंदर बहुत सारी बुक्स मौजूद है, इंग्लिश के अंदर बहुत सारी बुक्स मौजूद है, और यही तीन लैंग्वेजेस हैं जो कि हम थोड़ी बहुत जानते भी हैं, बाकी पर्शियन के अंदर बहुत सारी बुक्स हैं, और टर्किश के अंदर होंगी, और न जाने हर लैंग्वेज के अंदर सीरत के ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं। तो अब कौन सी वाली बुक सेलेक्ट करना है, तो इस वक्त जो है ना मैंने फाइनली डिसाइड नहीं किया ये कौन सी बुक सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें मुझे ये भी देखना है कि उसके अंदर उस बुक में सफिशिएंट डिटेल्स भी मौजूद हो। ठीक है, और दूसरी ये भी हो कि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो आपके लिए। ठीक है, अब एक मसला इसमें यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली उनको उर्दू पढ़नी आती नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से वही एक रिस्ट्रिक्शन बन जाती है कि इंग्लिश में होनी चाहिए वो बुक। ठीक है, तो खैर आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट, अभी तक उसके ऊपर सोच ही रहे कि कौन सी बुक होनी चाहिए, लेकिन जो एक बुक मेरे पास अवेलेबल है जो कि बहुत अच्छी बुक है ना सीरत के ऊपर, उसका नाम है रहीकुल मख्तूम, अर रहीकुल मख्तूम। ये ओरिजिनली अरबिक में लिखी गई थी, लिखने वाले एक इंडिया के स्कॉलर हैं, ठीक है ना, सफीउर रहमान मुबारकपुरी उनका नाम है, तो उन्होंने अरबिक में लिखी थी, फिर उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी हुई हैं और उर्दू में भी हुई हैं, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर इसकी ट्रांसलेशन अवेलेबल हैं। तो ये बुक हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इस बुक के साथ खाली हमारे एतबार से प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि ये जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें काफी ज्यादा डिटेल है और कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि आप लोग के लिए जरा मुश्किल होंगे। तो कोशिश करते हैं इसको हमने फिलहाल तो इसी को इस्तेमाल करना है because that's what I had available. सही है, seals nectar इसको इंग्लिश में कहते हैं, बिल्कुल सही आपने लिखा. इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो टाइटल है वो है sealed nectar. ठीक है, रहीक जो है वो शहद जैसे होता है ना, बहुत ही मीठी कोई चीज, उसको कहते हैं. और मखदूम का मतलब होता है कि जिसको कि आपने ना बहुत ही प्रिजर्व करके रखा हुआ, अच्छी तरीके से उसको सील करके रखा हुआ. ठीक है, तो इस वजह से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनता है द सील नेक्टर. नेक्टर जैसे कि जो जो फ्लावर्स होते हैं ना, तो फ्लावर्स के अंदर से जो जो रस निकालती है हनी बी, उस रस को लेकर के फिर वो अपने हाइव में जाती है, जो जो शहद की मक्खी का घर होता है, वहां पे जाकर के वो उस नेक्टर को ना एक खास तरीके से प्रिजर्व करती है उस हाइव के अंदर, बी हाइव के अंदर, तो वो वहां पे जाके शहद बन जाता है. ठीक है, तो इन्होंने ना अपनी बुक का नाम जो है और रहीकुल मखदूम रखा, क्योंकि ये एक लफ्ज है जो कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है. ठीक है, बहुत ही मजे की एक चीज होती है जो कि जन्नत के अंदर ईमान वालों को मिलेगी. ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी ऐसी है जैसे कि अर्रहीकुल मखदूम, सील नेक्टर की तरह से बहुत बहुत मजेदार, बहुत ही ज्यादा फायदा मंद. ठीक है, गोया कि जैसे कि शहद के अंदर अल्लाह ताला ने शिफा रखी है हमारे लिए, उसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अल्लाह ताला ने हमारे लिए शिफा रखी है, क्योर रखा है सारी परेशानियों का. सही है, बहरहाल तो हम अब यहाँ से शुरू करते हैं सील नेक्टर यानी अर्रहीकुल मखदूम से. हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ पढ़ करके ना आपको एक्सप्लेन भी साथ करते चले जाएंगे. अभी आपके सामने रेफरेंस की शायद मौजूद नहीं होगी क्योंकि हर एक के पास तो अवेलेबल नहीं है ये किताब. अच्छा, सबसे पहले जो है ना हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो जगह है जिस जगह को अरब कहते हैं. राइट, अरब, अरेबिया. क्यों? क्योंकि अरेबिया वो जगह है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को भेजा. ठीक है, अब नबी अलैहिस्सलाम जो है ना, ये आपको पता होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये इनका टाइटल क्या है? जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का टाइटल है खलीलुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम का टाइटल है कलीमुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम कौन है जी? रसूलुल्लाह तो सारे हैं, हबीबुल्लाह. एग्जैक्टली, ठीक है, तो हबीबुल्लाह अल्लाह ताला के बिलवड, अल्लाह ताला के महबूब. सही है, तो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ है? नबी अलैहिस्सलाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है. ठीक है, तो आप अल्लाह ताला के बिलवड हैं हर चीज से ज्यादा. ठीक है, हर इंसान से ज्यादा, हर मखलूक से ज्यादा, जो चीज भी अल्लाह ताला ने बनाई है ना, उन सब चीजों में सबसे ज्यादा बिलवड अल्लाह ताला को कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा बिलवड होता है ना किसी का, तो जिसको उससे लव होता है, जिसको उससे मोहब्बत होती है, तो वो ना उसकी हर चीज का ख्याल रखते हैं. उसको हर चीज जो वो देते हैं ना, वो बेहतरीन से बेहतरीन चीज देते हैं. हर चीज जो उसको मिलती है जिससे कि इंसान को लव होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक घर है, उसके अंदर माँ है, बाप है, पेरेंट्स है. ठीक है, उनका एक बच्चा है, तो अब पेरेंट्स को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होती है? अपने उसे एक बच्चे के साथ होती है. ठीक है, सबसे ज्यादा, लेट्स से अगर वो बस एक ही बच्चा है उनका, एक ही दादा और बच्चे हैं भी नहीं. ठीक है, तो अपना पेरेंट्स का जो है ना कंप्लीट फोकस जो होता है वो अपने उस एक बच्चे के ऊपर होता है. वो उस बच्चे के लिए जो सबसे अच्छी चीज होती है ना खाने की, जो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं. राइट, भाई पेरेंट्स इंसान होते हैं, उनके पास अनलिमिटेड पैसे तो नहीं होते, लेकिन जितने भी पैसे होते हैं ना, उनसे जो बेहतरीन खाने की चीज हो सकती है ना, वो बेहतरीन खाने की चीज लेकर के आते हैं अपने उस बच्चे के लिए, क्योंकि ही इज और शी इज द बिलवड ऑफ दोस पेरेंट्स. ठीक है, जो सबसे बेहतरीन बेस्ट कपड़े वो खरीद सकते हैं बाजार से, वो बेस्ट कपड़े जो होते हैं ना, वो अपने उस एक बच्चे के लिए खरीद करके लेकर के आते हैं. ठीक है ना, उसके लिए जो बिस्तर वो खरीद के लेकर के आते हैं, उस सबसे बेस्ट बिस्तर जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो उस बच्चे के लिए खरीद के लेकर के आते हैं, जिसको कि वो क्रिप कहते हैं या कोई और पॉट वगैरह कहते हैं. सही है, हर चीज बेस्ट, दी बेस्ट. ठीक है ना, व्हाई? because that child is the beloved of his parents or her parents. ठीक है ना, सबसे ज्यादा मोहब्बत उस बच्चे के साथ है. इन पेरेंट्स को जो है वो दुनिया की किसी और चीज के साथ वैसी मोहब्बत नहीं होती. हाँ भी होती है मोहब्बत इन पेरेंट्स के अपने भाई बहन भी होते हैं, होती है मोहब्बत भाई बहन के साथ, इनके अपने पेरेंट्स भी होते हैं उनके साथ भी मोहब्बत होती है, दूसरी चीजों के साथ भी मोहब्बत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होती है, इस बच्चे के साथ होती है. ठीक है, बिल्कुल यही मामला अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के साथ भी है, क्योंकि नबी अलैहि सलाम जो है ना वो अल्लाह ताला के बिलवड है सबसे ज्यादा. तो इस वजह से अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहि सलाम के लिए जो भी चीज सेलेक्ट करी ना, जो भी चीज लेकर के आए, वो सबसे बेहतरीन चीज थी, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एवरीथिंग वॉज द बेस्ट. ठीक है, व्हाई? बिकॉज ही इज द बिलवड. सही है. अब अल्लाह ताला कैन अफोर्ड, अल्लाह ताला की अफोर्ड का कोई लिमिट है? अल्लाह ताला क्या अफोर्ड कर सकते हैं? अल्लाह ताला कैन अफोर्ड एवरीथिंग. ठीक है ना, तो अल्लाह ताला ने जितनी क्रिएशन बनाई थी ना, अल्लाह ताला उस क्रिएशन में से कुछ भी दे सकते हैं अपने नबी को ना, बिकॉज अल्लाह ताला को तो कोई रोकने वाला नहीं है. ठीक है ना, तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया कि अपनी तमाम क्रिएशन में से जो सबसे अच्छी अच्छी चीजें थी वो अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी, अपने महबूब को दी. ठीक है ना, तो उसके अंदर से जो यूजुअली हम बात करते हैं जब सीरत की बात करते हैं, तो सबसे पहले किस चीज की बात करते हैं? हम उस जगह की बात करते हैं, उस कंट्री की बात करते हैं कि जिस कंट्री में अल्लाह ताला ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा. ठीक है, वो कंट्री कौन सा था, वो लैंड कौन सी थी, उसको कहते हैं अरेबिया. ठीक है ना, ये तो बहुत ही कॉमन सवाल इस वजह से आपसे पूछ रहा, तो वो अरेबिया है. तो दैट इज व्हाई व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सीरा, वी स्टार्ट विद द मेंशन ऑफ और द डिस्कशन ऑफ द लैंड ऑफ अरेबिया. ठीक है, अजीब लैंड ऑफ अरेबिया के अंदर तफसीलात पर मौजूद है सीरत की किताबों में, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर इसके बाद आपको एक पिक्चर दिखाएंगे. एक स्क्रीन हमने शेयर करी ली है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर और आप लोगों को भी नजर आनी चाहिए. अगर किसी को स्क्रीन शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको जरा देख लें. ठीक है, स्क्रीन सबको नजर आ रही है, गर्ल्स की तरफ बॉयज की तरफ?
जी
ठीक है, ठीक है, लिख करके जवाब दिया करें. अच्छा ठीक है, चलिए सही है, सबको नजर आ रही है. तो अब जो सीरत की बुक है ना, उसमें ने लिखा है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं इसको पढ़ने के बजाय बस आपको एक्सप्लेन कर दिया ना कि जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा था ना, तो उस जगह का नाम अरेबिया है. ठीक है, अब जो लफ्ज अरब है ना, इसको अरब कहते क्यों है, तो अरब का मतलब क्या होता है? द वर्ड अरब, व्हाट डज इट मीन? अरब का मतलब होता है, अच्छा नहीं, वो अरबी का मतलब होता है. अरब का क्या मतलब होता है? अरब का मतलब होता है डेजर्ट. ठीक है, यानी एक बैरन लैंड. द वर्ड अरब मींस दैट. ठीक है, तो जो जगह होती है ना अरब, उस जगह किस जगह को कहते हैं, जो कि एक, यानी जहां पे पानी वगैरह ना हो. ठीक है, अहद कदीम से ये लफ्ज जजीरा नुमाए अरब और इसमें बसने वाली कौम पर बोला गया है. चले, तो इस जगह को जिस कंट्री के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उसको अरब कहते हैं. अच्छा, अब कहने चाहिए, आपसे पूछा तो नहीं है. ठीक है, अच्छा अब इसमें ना ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर सबसे खास बात क्या है, कोई बता सकता है? इस पिक्चर को देख करके आपके जहन में क्या बात आती है? मैंने वो सवाल बताया, आपने कोई जवाब नहीं दिया, उस सवाल तो आप ही है. जी जी, पूरी दुनिया, क्या पूरी दुनिया का नक्शा नजर आ रहा है? नहीं तो जी, अच्छा और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई कोई चीज ऐसी है जो कि आप लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हो इस तस्वीर के अंदर? हाँ, इन्होंने लिखा है सही जवाब. चले आप बता दें, आप बताने जा रहे हैं, जरूर करिए. गर्ल्स में भी सही जवाब आया है दो तरफ, दो स्टूडेंट से, बल्कि तीन स्टूडेंट से, और बॉयज में भी सही जवाब दिया है एक स्टूडेंट ने और आप लोगों ने नहीं दिया. सही जवाब क्या है? एग्जैक्टली, बिल्कुल बीच में है ये, सेंटर में है ये, पूरी दुनिया के मिडल में है. ठीक है ना, अब पूरी दुनिया एक्चुअली नजर नहीं आ रही है यहाँ पे, बिकॉज दुनिया जो है वो तो ग्लोब बेसिकली एक इलिप्टिकल चीज है ना, सर्कुलर किस्म की चीज है, जैसे बॉल होती है. ठीक है, अगर चिपटी सी वॉल, तो अब इसके अंदर आप एक साइड देख सकते हैं, दूसरी साइड देख भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये जो इस तस्वीर के अंदर जो आपको साइड नजर आ रही है ना, ये जो साइड है ये दुनिया की एक साइड है। इस साइड को आप कह सकते हैं कि दिस इज द ओल्ड वर्ल्ड, ये पुरानी दुनिया थी, यानी पुराने जमाने में यही दुनिया होती थी, ठीक है ना। फ्रॉम फार ईस्ट टू फार वेस्ट, फार ईस्ट पे क्या है, जापान है, कोरिया है, ठीक है ना, बिल्कुल राइट एंड पे। वो जो याद है ज़ुल्करनैन का वाक्या पढ़ा था, तो वो ट्रैवल करते 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 एकदम फार ईस्ट पे पहुंच गए थे, जिसके आगे समंदर था, आगे नहीं जा सकते थे। वो फार वेस्ट पे भी पहुंच गए थे, जहाँ पे मोरिटानिया है या स्पेन है, उसके आगे वो नहीं जा सकते थे, ठीक है। तो उस जमाने की दुनिया यही दुनिया थी, लोग ना बस यही, जो भी इंसान थे वो यही बसते थे। एनिमल्स तो और जगहों पर भी बसते थे, और जगहों पर भी रहते थे, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स इसी दुनिया में रहते थे सिर्फ, ठीक है। तो यही ओरिजिनल वर्ल्ड थी। तो इस ओरिजिनल वर्ल्ड का सेंटर क्या है, वो ये अरेबियन पेनिनसुला है। पेनिनसुला किसको कहते हैं, उस पीस ऑफ लैंड को कहते हैं कि जिसके जिसके थ्री साइड्स पे वाटर हो और एक साइड पे लैंड हो। अगर चारों तरफ वाटर होता तो उसको क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं, जजीरा कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अरेबिया जो है ना, ये जजीरा नहीं है, बल्कि ये जजीरा नुमा है। इट्स लाइक एन आइलैंड बट इट्स नॉट एन आइलैंड। तो इसको इंग्लिश में पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको कि ये जो did the aboriginals not exist at that time, most likely they did not exist at that time, ठीक है। जो हमें हिस्ट्री मिलती है ना, तो उसके अंदर फिर जो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, तो उनका जिक्र हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो वहां पर ना लोग सेटल हुए थे बाद में जाकर के, ठीक है। तो ओरिजिनल वर्ल्ड जो थी ना, वो इतनी थी, लोगों ने इतना ज्यादा ना फिर वो समंदरों के अंदर ट्रैवल शुरू नहीं किया था कि पैसिफिक ओशन को क्रॉस कर जाएं और अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर जाएं। इतनी बड़ी बड़ी बोट्स लोगों ने उस वक्त तक नहीं बनाई थी। तो खैर यही थी। तो इसका जो सेंटर है वो क्या है, ये अरेबियन पेनिनसुला है। तो इसको अगर हम देखें ना, तो क्या चीज नजर में आती है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के लिए जो सबसे ज्यादा सेंटर मोस्ट जगह थी दुनिया की, उसको चूज किया, ठीक है। अब आप एक और चीज इसके अंदर नोट कर सकते हैं कि ये जो अरेबियन पेनिनसुला है, ये देख करके किसी और को कोई और बात भी याद आती है, किसी ने थोड़ा अगर बायोलॉजी को पढ़ा हो, बूट ये तो बूट नहीं लगता, बूट की तरह तो वो रोम लगता है हाँ लेकिन ठीक है, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा रोम, वैसे बिल्कुल एक शू की तरह है, इटली जिसको आजकल कहते हैं, बिल्कुल शू। तो एक और चीज इसके अंदर क्या नजर आती है जी, एग्जैक्टली बायोलॉजी का नाम लिया था। तो ये ना एकदम जैसे इंसान की बॉडी के अंदर हार्ट होता है ना, ये बिल्कुल उसी तरीके से एक हार्ट की शेप का भी है। हार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, हार्ट भी जो होता है ना, फिजिकल हार्ट जो हमारी जिस्म में होता है, वो भी ऊपर से बाकी बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है, और बाकी जो वो हार्ट होता है ना, वो गोया के फ्लूइड के अंदर होता है। जैसे कि ये अरेबियन पेनिनसुला जो है ना, वो वाटर के अंदर है ना, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, नीचे भी वाटर है, उसी तरह से हार्ट भी ऐसे ही होता है, और खाली ऊपर से ना वो बाकी बॉडी के साथ फिजिकली कनेक्टेड होता है, फिजिकल यानी हार्ट बॉडी के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो हार्ट की शेप भी है इसके अंदर, सेंटर भी है ये पूरी दुनिया का। तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम अपने महबूब के लिए जो है ना, वो दुनिया का दिल पसंद किया। अब इसके ऊपर एक बात वैसे मेरे दिल में आती है, तो वैसे अपनी अपनी बात है, किताब में नहीं लिखी हुई, कि इस दुनिया का जो सेंटर है वो है अरेबिया। अगर आप उसको पूरी दुनिया के हिसाब से भी देखें तो भी ये शायद सेंटर आप कह सकते हो, पूरी दुनिया यानी पीछे भी जो दुनिया है उसके हिसाब से भी देखें, ठीक है। कम अज कम जो सामने है ना, जो दुनिया सामने नजर आ रही है, उसका तो ये सेंटर ही हुआ, ठीक है। अब इसके पीछे क्या है, बिल्कुल इसके पीछे क्या चीज है, अमेरिकास। इसके पीछे क्या चीज है, अमेरिकास है। अच्छा कोई ये बता सकता है, अमेरिकास के अंदर से भी अगर हम पूछें कि कौन सी चीज बिल्कुल इसके पीछे है, वो किसी को बताए, अरेबियन पेनिनसुला नहीं, अरेबियन पेनिनसुला जैसे आप ग्लोब को देख रहे हैं, ठीक है ना, ये ग्लोब एक बॉल की तरह से, आप इस बॉल को इधर से देख रहे हैं तो आपको अरेबियन पेनिनसुला नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप उधर जाके खड़े हो जाए और वहां से आप देखें
तो आपको क्या चीज नजर आएगी, बिल्कुल इसके पीछे। तो वही तो उन्होंने बता दिया नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। अब हम पूछ रहे हैं नॉर्थ अमेरिका तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर कौन सी चीज बिल्कुल सऊदी अरब के पीछे पड़ती है? नहीं पता, चले जॉर्डन। जॉर्डन तो बराबर में है इसके, पीछे कैसे पड़ेगा? लॉस एंजलिस। वाह क्या जबरदस्त प्रिसाइज उन्होंने बताया, शहर का नाम बता दिया। लॉस एंजलिस के मक्का मुकरमा के पीछे पड़ता है, मुझे भी नहीं मालूम ये बात। लेकिन हाँ, लॉस एंजलिस जिस स्टेट में है ना, जिसको कहते हैं कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया बिल्कुल इसके ऑपोजिट पड़ता है। ठीक है, अब अगर किसी को कैलिफोर्निया के बारे में कुछ पता है, ठीक है, तो क्या है कैलिफोर्निया? कैलिफोर्निया मशहूर किस बात से, सऊदी अरब किस बात से मशहूर है, पहले तो ये बताए। प्रॉफिट की वजह से, हाँ अल्लाह के घर की वजह से, ठीक है ना, काबतुल्ला की वजह से सऊदी अरब मौजूद है, सऊदी अरब तो नहीं अरेबिया, इस वजह से मशहूर है। कैलिफोर्निया की शोहरत की क्या वजह है? कैलिफोर्निया की जो सबसे ज्यादा मशहूरी की वजह है ना, वो है फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म्स बनती हैं वहां पे। ठीक है, उस जगह जहां पे बनती है वो नाम भी बड़ा मशहूर है, हॉलीवुड कहते हैं उस जगह। ठीक है, लॉस एंजलिस के अंदर वो जगह है। तो अरेबिया किस चीज के लिए मौजूद है, किस चीज के लिए मशहूर है? अल्लाह के घर के लिए। और इसके बिल्कुल फ्लिप साइड के ऊपर, जैसे कॉइन होता है ना, कॉइन उसका एक साइड और उसका फ्लिप साइड कहलाता है दूसरी साइड, ठीक है, उसी तरह दुनिया का फ्लिप साइड कौन सी है? वो कैलिफोर्निया है। और कैलिफोर्निया किस चीज के लिए मशहूर है? मूवीज के लिए, सिर्फ गुनाह के लिए नहीं बल्कि मूवीज वाले गुनाह के लिए। मूवीज वाले गुनाह में और आम गुनाह में क्या फर्क है? कान थोड़े से खराब है, हम जोर से बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा बाकी में बहुत सारे गुनाह कबीरा होते हैं, मूवीज वाले गुनाह में और बाकी गुनाहों में कोई फर्क बताए? अच्छा, वो सारी दुनिया देख रही होती है। हाँ, मूवीज में और दूसरे गुनाहों में एक मेजर फर्क यह है कि बहुत सारे गुनाह इंसान करता है, अकेले में करता है, ठीक है ना, वो अकेला खुद कर रहा होता है या चंद लोग बस उसके साथ मिलके कर रहे होते हैं। लेकिन जब मूवीज बनाई जा रही होती है ना, तो ये मूवीज बना करके फिर इन मूवीज को फिर आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, टेलीकास्ट करते हैं, पूरी दुनिया में आप उनको भेज रहे होते हैं। तो ये सिर्फ कैलिफोर्निया वाले ये गुनाह नहीं कर रहे होते, बल्कि कैलिफोर्निया वाले पूरी दुनिया से गुनाह करवा रहे होते हैं, पूरी दुनिया के अंदर गुनाह को स्प्रेड कर रहे होते हैं, फैला रहे होते हैं। तो जितनी दुनिया के लोग मूवीज देख रहे होते हैं, वो सारे के सारे उस गुनाह का अजाब, उस गुनाह का वबाल किन के ऊपर आ रहा होता है? हॉलीवुड वालों के ऊपर आ रहा होता है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर आप अरेबिया वालों को देखें, तो अरेबिया के अंदर कौन सा वाली नेकी हो रही होती है? अरेबी के अंदर कौन सी असल नेकी हुई? मेन सऊदी अरब के, यानी अरेबिया के अंदर, क्योंकि सऊदी अरब इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि इसके अंदर यमन और ये सब कुछ भी शामिल है, ठीक है। यहां पर कौन सी वाली नेकी हुई? यहां पर नेकी खाली ऐसी नहीं हुई कि बैठ करके लोग इबादतें कर रहे हैं और बस अपना अपना नेकी का काम कर रहे हैं, नहीं, बल्कि यहां से नेकी का काम जो है वो पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ, फैला पूरी दुनिया के अंदर, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से उस तरफ जो गुनाह का काम होता है, वो गुनाह का काम भी ऐसा गुनाह का काम है जो कि पूरी दुनिया के अंदर फैला रहे होते हैं, पूरी दुनिया, ठीक है। तो देखें अल्लाह ताला ने क्या निजाम बनाया, अजीब है ना। इस तरफ जो है वो नेकी का सेंटर है, उस तरफ गुनाह का सेंटर है, इस तरफ नेकी फैलाने का सेंटर है, उस तरफ गुनाह फैलाने का सेंटर बना दिया, है ना। शिकागो के अंदर कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनाई, है ना, ब्राजील के अंदर कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनाई, न्यूयॉर्क के अंदर, टोरंटो के अंदर, कितने सारे मुल्क हैं वहां पर, कितने सारे सिटीज हैं वहां पर, किसी एक के अंदर भी नहीं बनाई फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री कहाँ बनी है? लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के अंदर। अच्छी, अल्लाह ताला का हर काम जो होता है ना, एवरीथिंग इज वेरी वेल कैलकुलेटेड, हर चीज प्रिसाइसली कैलकुलेटेड होती है। हाँ हमें कुछ पता नहीं होता है, हमें समझ में नहीं आ रही होती, वो और बात है, वो हमारी मसला है। लेकिन अल्लाह ताला तो कोई काम करते हैं ना ऐसे ही नहीं कर देते खाम खाम में बस रैंडमली, ठीक है। अच्छा हज उमरा तो ऐसी बात है ना जो इंसान अपना इंडिविजुअली करता है, यहां से तो दीन की तबलीग होती है, असल में दीन फैलता है पूरी पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा अब इन्होंने जो जो और एक बात लिखी है एक पैराग्राफ में, वो भी उस पिक्चर के अंदर आप लोग देख लें कि ये जो पेनिनसुला है अरेबियन पेनिनसुला, इसके वेस्ट में क्या है, वेस्ट किसको कहते हैं, लेफ्ट साइड को, जब हम देखते हैं किसी चीज को तो लेफ्ट पे वेस्ट पड़ता है, तो वेस्ट पे क्या क्या है नहीं अब हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल तस्वीर को देख करके आप ज्योग्राफिकली, इसके लेफ्ट पर लेफ्ट बहीरा अहमर कहते हैं उसको, रेड सी, अहमर मींस रेड, ठीक है, उसको बहीरा कुलज़म भी कहते हैं। खैर ये रेड सी जो है ना वो इसके लेफ्ट पर है, और जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो भी इसके लेफ्ट पर ही पड़ता है, सही है। अच्छा इसके राइट पर जिसको ईस्ट कहते हैं, ईस्ट में क्या चीज है, ईस्ट के अंदर एक गल्फ है, एक सी है, जो कि वो सी भी तीनों तरफ से कनेक्टेड है, सॉरी एक तरफ से कनेक्टेड है सी के साथ और तीन तरफ से वो लैंड से कवर्ड है, अजीब रिवर्स इमेज, बड़े बच्चों को समझ आ रहा है ना, जिस तरह से जो लैंड ऑफ अरेबिया है वो लैंड से एक तरफ से कनेक्टेड है ना, और तीन तरफ से वो वाटर से एनसर्कल्ड है, उसी तरीके से ये जो गल्फ है, ये गल्फ जो कि वाटर की गल्फ होती है, वो लैंड तो नहीं होती, वो तो वाटर होती है, वो वाटर की जो बॉडी है वो वाटर से कहां से कनेक्टेड है, एक तरफ से खाली, और लैंड से एनसर्कल्ड तीन तरफ से है, तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे ये लैंड ऑफ अरेबिया का जो रिवर्स इमेज आप करते हैं तो वो गल्फ हो गई, ठीक है। अब इस गल्फ को कुछ लोग जो है वो कहते हैं ये अरेबियन गल्फ है, कुछ लोग कहते हैं पर्शियन गल्फ है, इसके ऊपर लड़ाई हो रही होती रहती है, नहीं ये अरेबियन है, वो कोई कहता है पर्शियन है, बहरहाल जो भी है तो उसको गल्फ कहते हैं, इस तरह की बॉडी ऑफ वाटर। अच्छा उससे पीछे चले जाए तो फिर वो ईरान का कंट्री आ जाता है, ठीक है। अच्छा इसके साउथ में क्या है, साउथ के अंदर बेसिकली अरेबियन सी है, ठीक है, और इसको इंडियन ओशन भी कहते हैं, ये अरेबियन सी जो है ना ये थोड़ा सा अगर आप आगे चले जाए इसमें तो वो इंडियन ओशन बन जाता है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के साउथ में पीछे आता है, ठीक है। इसके नॉर्थ में क्या है, इसका जो नॉर्थ है ना यानी शुमाली इलाका जिसको कहते हैं, ये शुमाली इलाका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसलिए कि ये जो लैंड ऑफ अरेबिया है ये जो बाकी दुनिया से कनेक्ट होता है ये अपने नॉर्थ से ही कनेक्ट होता है, तो इसका जो नॉर्दर्न रीजन है ना, समझ लें कि दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन द अर्थ, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट या सेकंड बेस्ट, ठीक है, द बेस्ट प्लेस कौन सी थी, अरेबिया खुद, और सेकंड बेस्ट कौन सी है, ये इसका नॉर्थ के एरिया, नॉर्थ के एरिया को क्या कहते हैं, यहाँ पे जो बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, एक है जिसको इराक कहते हैं, राइट, इराक, इराक कुछ कहते हैं लोग, और दूसरा है शाम, ठीक है, जिसको कि आजकल सीरिया कहते हैं, ठीक है, तो बेसिकली शाम का इलाका और इराक का इलाका, ये दोनों चीजें इसके नॉर्थ में मौजूद है। अब ये दोनों भी ना सेकंड बेस्ट यानी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। अच्छा तो ये तो हो गया इसकी ज्योग्राफी के बारे में, तो इसमें हमने क्या बात सीखी है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के लिए जो जगह पसंद करी दुनिया में, वो जगह भी जो थी ना वो सबसे बेस्ट जगह थी, ठीक है, हार्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरह से है और उसकी अपनी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। अच्छा मजीद बुक में ये लिखा हुआ है कि इसका जो ओवरऑल एरिया है वो 10 मिलियन स्क्वायर माइल्स से लेकर 13 मिलियन स्क्वायर माइल्स तक इसका एरिया है। खैर ये तो एक वैसे नंबर है। अच्छा ये जो अल्लाह ताला ने इस अरेबिया को ऐसे रखा तो इसमें एक और भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो ये क्या है कि ये जो अरेबिया है ना, ये कंट्री ऑफ अरेबिया, ये इसके अंदर ना डेजर्ट बहुत ज्यादा है, जैसे अभी बताया था ना कि लफ्ज अरब का मतलब होता है सहरा, डेजर्ट, ठीक है, तो इस वजह से ना इस अरब के लैंड के अंदर ना बहुत ज्यादा डेजर्ट्स हैं, यानी जहां पर बिल्कुल पानी नहीं होता, सिर्फ रेत होती है, मिट्टी होती है, ठीक है। तो स्कॉलर्स ने लिखा है कि इतने ज्यादा डेजर्ट, अच्छा डेजर्ट का मतलब सिर्फ मिट्टी वाली जगह नहीं होती, ये तो होता है ना सैंड वाला जो होता है ना, उसको भी डेजर्ट कहते हैं, लेकिन ऐसी जगह को भी डेजर्ट कहते हैं कि जहां पर माउंटेन्स हों, ठीक है ना, लेकिन उन माउंटेन्स के ऊपर कोई दरख्त और पौधे पौधे ना हो, बिल्कुल वो बैरन माउंटेन्स, उसको भी डेजर्ट कहते हैं, ठीक है ना। या अगर प्लेन लैंड है, पत्थर वाली लैंड है, और वहां पर पत्थर ही पत्थर है, मिट्टी नहीं है, पत्थर है, लेकिन पानी नहीं है और पौधे वगैरह नहीं है, तो उसको भी डेजर्ट करते हैं। तो ये जो अरेबिया है ना, ये चारों तरफ से ना डेजर्ट से कवर्ड है। तो इससे एक फायदा क्या हुआ था इस अरेबिया वालों को, वो ये कि उस जमाने में जब नबी अलैहिस्सलाम सलाम इस दुनिया में भेजे जाने वाले थे, तो उस जमाने में ना दो सुपर पावर्स होती थी वर्ल्ड के अंदर, बहुत बड़े बड़े यानी कंट्रीज होते थे जिनके पास बहुत ज्यादा मिलिट्री पावर होती थी, आर्मीज होती थी उनकी बड़ी बड़ी, और बहुत पैसा और दौलत सब कुछ होता था। ये कौन सी दो सुपर पावर्स थी उस जमाने में? फारिस और रोम, ठीक है ना। एक का नाम था फारिस, जिसको कि इंग्लिश में पर्शिया कहते हैं, और दूसरी का नाम था रोम, जिसको इंग्लिश में भी रोम ही कहते हैं, द रोमन एम्पायर एंड द पर्शियन एम्पायर, ठीक है। तो ये जो एम्पायर्स थी ना, ये बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि आज के दौर में आप कह सकते हैं, इस वक्त आप कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं चाइना, ठीक है ना। जो इस वक्त जो सेकंड वर्ल्ड पावर है वो सॉर्ट ऑफ चाइना है, पहले एक जमाने में वो सोवियत यूनियन कहलाती थी, वो खत्म हो गई टूट करके, ठीक है। तो अब ये जो वर्ल्ड पावर्स होती है ना, ये वर्ल्ड पावर्स जो है ना, ये चूंकि इनके पास बहुत पावर होती है, बहुत मिलिट्री होती है, तो अब इनको ना एक बड़ा शौक लगा हुआ होता है। वो शौक क्या लगा हुआ होता है, क्या उनको शौक लगा होता है कि ये ना अपने साइज को बढ़ाएं, बड़ी होती चली जाए, बड़ी होती चली जाए। तो अब ये क्या करती है ना, ये ना छोटे छोटे जो कंट्रीज होते हैं ना, उनको कब्जा करती रहती है, इसको भी कब्जा कर लिया, उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया, मिलिट्री भेजी उधर भी कब्जा कर लिया। तो या तो ये कंट्री के ऊपर कब्जा कर लेती है, या क्या करती है, ये कहती है कि उस कंट्री का जो जो गवर्नमेंट है ना, उस गवर्नमेंट से कहती है कि भाई देखो, तुम या तो ना हमसे लड़ो और फिर अगर हम जीत गए तो हम तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेंगे, ठीक है, या अगर तुम हमसे लड़ना नहीं चाहते ना, तो ऐसा करो तो कि तुम हमारे दोस्त बन जाओ, तुम हमारे एलाइज बन जाओ, दोस्त बन जाओ, ठीक है ना, तो फिर हम तुम्हें ना फिर बादशाह रहने देंगे, अपनी कंट्री का कोई बात नहीं, तुम बादशाह रहो, लेकिन तुम जो है ना फिर हमारे दोस्त के तौर पर रहो, सही है। तो अब वर्ल्ड पावर्स यही करती हैं, वो या तो कब्जा करती रहती हैं, या ये कि उनको अपने अंडर इन्फ्लुएंस लेना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पर्शिया वालों ने भी यही किया हुआ था कि उन्होंने अपने साथ के छोटे छोटे कंट्रीज को जो है ना वो कब्जा कर लिया था, बहुत बड़ी हो गई थी, उसी तरह रोमन भी यही करते रहते थे, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है ना, ये कभी भी अरेबिया का जो ये सेंटर वाला एरिया था ना, जहाँ पे मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, ताइफ और इवन रियाद, राइट, और बहरीन, ये सारा जो एरिया था ना, ठीक है, ये कभी भी इधर कब्जा नहीं कर सके, कभी भी यहाँ पे ये लोग नहीं आ सके। क्यों? उसकी वजह यही थी कि यहाँ पे इतना बड़ा डेजर्ट होता था कि ये लोग डरते थे यहाँ पे आने से, कि हमारी फोर्सेस कहीं ना रास्ते में प्यास से मर ना जाए, है बहुत ज्यादा गर्मी होगी, इतनी आपको पता है यहाँ पे इतनी 50 डिग्री सेल्सियस तो इतनी गर्मी होती है, तो कहीं हमारे लोग मर ना जाए, कहीं जो है वो हमें फायदा क्या होगा इधर जाके, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कोई उनको जमाने में ऑयल वगैरह कोई थोड़ी था इधर, है ना, वो तो बिल्कुल डेजर्ट था, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे। वो लोग कहते थे कि यहाँ पे जो लोग है ना, दे आर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट पीपल, है ना, ये लोग तो जो है ना ये लिजर्ड्स खाते हैं, लिजर्ड्स, लिजर्ड ईटर है ये लोग, और क्या वो झूठ बोलते थे? नहीं, वो सच बोलते थे, वाकई जो अरेबिया के लोग हैं वो लिजर्ड्स खाते थे, लेकिन ये लिजर्ड जो है ना, ये छोटे छोटे लिजर्ड्स नहीं होती जो घर में होती है, ये होती है इतनी बड़ी, वो कहते हैं उसको, तो मोरो ड्रैगन, हाँ ड्रैगन भी कुछ लोग कहते हैं उसको, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी डिजर्ट होती है, डिजर्ट होती है जो कि डेजर्ट के अंदर होती है। अरब्स जो है ना, इवन आज भी उन डिजर्ट को पकड़ के खाते हैं, ठीक है ना, और कुछ फिता के अंदर एक्चुअली हलाल भी है, इसको वो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम आज की क्लास रोकते हैं, इंशाल्लाह यहाँ से अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है उससे पहले आपको हम किताब का नाम वगैरह कुछ बता दें, तो आपकी अब फिता की क्लास शुरू होती है, बॉयज की, गर्ल्स की क्लास यहाँ से हम बंद कर देते हैं। अच्छा, अब इसको स्पीकर के साथ